एवं संदर्शिता ह्यंग हरिना भ्रत्यवत्सत्वश्यता
हरिना भ्रत्यवश्यता
स्वबशेनापि कृष्णेन यश्चेदं सेश्वरं वशे एवं संदर्शिता ह्यंग हरिना भ्रत्यवश्यता स्वबशेनापि कृष्णेन यश्चेदं सेश्वरं वशे एवं संदर्शिता ह्यंग हरिना भ्रत्यवश्यता स्वबशेनापि कृष्णेन यश्चेदं सेश्वरं वशे अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद। हे महाराज परीक्षित भगवान शिव भगवान ब्रह्मा तथा भगवान इंद्र जैसे महान एवं उच्च देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है, ये सभी उनके वश में है। शिव ब्रह्मा इंद्र देवता ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है, फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के वश में रहते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है। कौन सी लीला में? दामोदर लीला या उखल बंधन लीला में भगवान भक्त के अधीन कि भगवान के भक्तों के वश में वे कैसे रहते हैं, ये गुण भगवान का दिखाया है। एवं इस प्रकार तात्पर्य कृष्ण की इस लीला को समझना दुष्कर है। दुष्कर है मतलब कठिन, एक सुकर दूसरा दुष्कर, करने में कठिन दुष्कर करना दुः कठिन। तो करना क्या जानना समझ पाना दुष्कर है, किंतु भक्तगण इसे समझ सकते हैं। इसलिए कहा गया है दर्शयन सद्विदाम लोक आत्मनो भक्तवश्यताम, भागवत 10:11-9 में ये उद्धृत श्लोक था। भगवान अपने भक्तों के वश में होने का गुण प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्म संहिता 5:35 में कहा गया है एकोप्यसौ रचयितुं जगदंडकोटिं अंडांतरस्त परमानुचयांतरस्तं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अपने एक अंश परमात्मा से भगवान असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके देवताओं को नियंत्रित करते हैं, फिर भी वे अपने भक्त द्वारा नियंत्रित होने के लिए राजी हो जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान मन से भी अधिक वेग से दौड़ सकते हैं, किंतु यह हम देखते हैं कि अपनी माता द्वारा पकड़े जाने से बचने की इच्छा रखते हुए भी कृष्ण पराजित हुए और माता यशोदा द्वारा पकड़ लिए गए।
लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से व्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि।
कृष्ण की सेवा लाखों लक्ष्मियां करती है, फिर भी वे मक्खन की चोरी इस तरह करते हैं मानो दरिद्र हो या उनके घर में मक्खन नहीं है, भिखारी है, दूसरे के घर पर जाकर चोरी कर रहे हैं। दरिद्री है, चोर भी है। यद्यपि सारे जीवों का नियंत्रक यमराज से भयभीत रहता है, फिर भी कृष्ण अपनी माता की सांटी मतलब छड़ी से भयभीत है। सांटी इस विरोधाभासों को अभक्त नहीं समझ सकता, किंतु भक्त समझ सकता है कि कृष्ण की अनन्य भक्ति कितनी बलवान है। यह इतनी बलवान है ये भक्ति कि एक शुद्ध भक्त द्वारा नियंत्रण में रखा जा सकता है कृष्ण को। इस भृत्य वश्यता, भृत्य मतलब सेवक, भृत्य ईश्वर एकला कृष्ण आर सब भृत्य, भृत्य तो बाकी सब भृत्य वश्यता, भृत्य के वश में, सेवक के वश में। इस भृत्य वश्यता का अर्थ यह नहीं है कि वे अपने दास के वश में है, प्रत्युत वे दास के शुद्ध प्रेम के वश में रहते हैं, प्रेम के वशीभूत। भगवत गीता 1:21 में कहा गया है कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, बने कि नहीं, तो नाम क्या हुआ उनका, पार्थ सारथी। अर्जुन ने उन्हें आदेश दिया, क्या आदेश था, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युतः। एक अच्युत नॉट अच्युत अच्युत संबोधन, हे कृष्ण आपने मेरा सारथी बनना और मेरे आदेशों का पालन करना स्वीकार किया है, अतः मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करो। कृष्ण ने तुरंत इस आदेश का पालन किया। अतएव यह तर्क दिया जा सकता है कि कृष्ण भी सदैव पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहते, किंतु यह तो मनुष्य का निजी अज्ञान है। कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र है, जब वे अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं तो यह आनंद चिन्मय रस का प्रदर्शन होता है जो उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने वाला है। हर व्यक्ति कृष्ण की पूजा भगवान के रूप में करता है, अतएव कभी कभी वे किसी अन्य द्वारा नियंत्रित होने की इच्छा करते हैं, भगवान की इच्छा होने से वो नियंत्रण में आ जाते हैं। आप लोग नियंत्रण में, कुछ नियंत्रण में आ रहे हैं। किसके वशीभूत हो रहे हैं, निद्रा के वशीभूत, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, ये अंतर है। अनिच्छन अपि, इच्छा नहीं होते हुए भी हम लोग तो निद्रा के वश में आ जाते हैं, तो भगवान कभी कभी स्वीकार करते हैं, हाँ चलो ये शक्ति वो शक्ति, योग माया वो माया, उनकी अपनी माया, अपनी शक्ति, निज शक्ति, अपनी निज शक्ति से ही के ही वशीभूत होते हैं, भक्तों के प्रेम के वशीभूत होने की इच्छा रखते हैं, मतलब वो स्वतंत्र है, चाहे तो वशीभूत हो जाए चाहे नहीं, नहीं हो सकते, लेकिन उनकी इच्छा से वो वशीभूत होना पसंद करते हैं। जैसे हमको जन्म तो लेना ही पड़ेगा, हम अपनी स्वेच्छा से जन्म लिए क्या? नहीं, कर्मणा दैव नेत्रेण सद असत जन्म योनिषु कहा है। हमने जो कर्म किए हैं, कर्म का फल के वश में हम सभी है, और फिर हम लोग जन्म लेते हैं। नहीं तो हम कुछ चॉइस के साथ, नहीं 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 वहां नहीं, नहीं नहीं उस परिवार में नहीं, चाइनीज नहीं बनना चाहता मैं, ऐसा नहीं बनना चाहता मैं, लंगड़ा नहीं बनना चाहता, ऐसी कुछ शर्तें होती हैं हम लोगों की, लेकिन कोई शर्त नहीं है। जहां भी हमको जिस योनि में ब्रह्मांड भ्रमीते भ्रमण करते करते कहीं पर फेंक दिया जाता है, इधर जाओ इधर जाओ इधर से जाओ, कोई इच्छा नहीं, माया के अधीन। कर्मणा दैवने प्रकृते क्रियमानानि गुणई कर्माणि सर्वशा, गुणों के वशीभूत, तीन गुणों के वशीभूत हम लोग हैं। क्योंकि भगवान तो अध्यक्ष है, इन तीन गुणों के भी अध्यक्ष है, तो भगवान की भृत्यवश्यता जो है ये भी अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप है। ये प्रभुपाद अंत में समझा रहे हैं। ऐसा नियंत्रक एक शुद्ध भक्त के अतिरिक्त भला अन्य कोई कैसे हो सकता है? और अंत में प्रभुपाद प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसा नियंत्रक भगवान के ऊपर भी नियंत्रक, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचरा चर, कहने का जिनको अधिकार है, ऐसे प्रभु नियंत्रण में आ जाते हैं अपने शुद्ध भक्त के। केवल शुद्ध भक्त का नियंत्रण भगवान स्वीकार करते हैं। तो शुद्ध भक्त नियंत्रक नियामक बन जाता है प्रभु का। तो एक शुद्ध भक्त के अतिरिक्त भला अन्य कोई कैसे हो सकता है नियंत्रक? ये प्रभुपाद पूछ रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिना भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। एवं मतलब इस प्रकार मतलब किस प्रकार, जो लीला यहां कही गई है उस प्रकार। ये 19वां श्लोक है इस अध्याय का, तो बड़ी मधुर लीला, भगवान की मधुर लीलाओं में एक मधुर मधुर लीला। का वर्णन, माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। एकदा गृहदाशिषु यशोदा नंद गेहिनी, ऐसी शुरुआत होती है उस लीला। एवं की शुरुआत कहां से हुई? एकदा, एक समय की बात है। वो कौन सा समय था? दिवाली का दिन था। ये लीला किस दिन हुई? एकदा मतलब हमें समझना कि एकदा एक समय, और समय कौन सा था? दीपावली का दिन था। दोपहर का समय था, प्रातःकाल का होना चाहिए, क्योंकि यह क्या हो रहा है? निर्ममंथ स्वयं दधि, दधि मंथन कब होता है? प्रातःकाल में होता है ना। जैसे भगवत गीता का उपदेश कितने कितने बजे सुनाए थे भगवान? हाँ, गीता का उपदेश भगवान ने कितने बजे सुनाया? वो भी एकदा की बात है ना, वो भी एकदा एक समय हुआ, प्रातःकाल में सुनाया। क्यों? युद्ध तो रात दिन चलते ही रहता, अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान जब लड़ता है तो वैसे सब दुनिया जब सो जाती है, बाल बच्चे सो जाते हैं तो आते हैं विमान से। लेकिन वो तो उस प्रकार के कलियुगी युद्ध नहीं था, ये धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध कितने कब प्रारंभ होता था? प्रातःकाल से, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, और रात्रि के समय वही लड़ने वाली पार्टी एक दूसरे को मिलके दे टू टेक डिनर टुगेदर मिलते थे। पहलवान कुश्ती खेल रहे, इसका मतलब ये शत्रु थोड़ी है, डिफरेंट, यानी फिट हो रहा है। तो निर्ममंथ स्वयं दधि, तो प्रातः काल के समय यशोदा देख और कैसी दधि मंथन कर रही है। यानी यानी ह गीतानी, गीत गा रही है, प्रभु के गुण गा रही है, अपने ही बालक के गुण गा रही है। इसे सुंदर लीला आप तो सुनी रहे थे। क्षौमं वासा पृथुकटी तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम, यशोदा का सारा वर्णन, यशोदा का सौंदर्य, यशोदा के वस्त्र, यशोदा के कंकण, यशोदा के हाथ की डोरी, और पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रु, और यशोदा के स्नुत कुच युगम, युगम मतलब दो, यशोदा के स्तन स्नेहवश, कृष्ण के प्रति यशोदा का स्नेह तो देखिए कितना स्नेह है। तो यशोदा के स्तनों से दूध चू रहा है, दूध टपक रहा है। जब वो कृष्ण का स्मरण करने लगी, कृष्ण के गीत गाने लगी, तो गीतों गीत के गाने से कृष्ण का स्मरण स्वाभाविक है। तो उस स्मरण से यशोदा के स्तनों से स्नेहवश, पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम, वैसे वे काप रहे थे, उसके स्तन काप रहे थे। स्तन क्या कर रहे थे? काप रहे थे। कंपन का कारण यह भी बताया है कि स्तनों में जो दूध है वो थोड़ा चिंता में है कि आज मेरा दूध पिएंगे कि नहीं, कि आज गाय का दूध पिएंगे कि मेरा दूध पिएंगे, स्तन का दूध पिएंगे, थोड़ा चिंता है, भय है इस बात का। इसके कारण उन स्तनों में कंपन है, जात कंपम, और सुंदर भव्य यशोदा की ऐसी यशोदा रज्वा, तो कंकण हिल रहे हैं, कंकण कुंडल भी हिल रहे थे, ऐसा ऐसा। तो सुखदेव गोस्वामी जो कथा सुना रहे हैं, कहाँ कथा सुना रहे हैं? यह गंगा के तट पर कथा सुना रहे थे। ये लीला तो कुछ कितने लगभग 100 वर्ष पूर्व लीला संपन्न हुई थी, तो मानव लीला को देखते हुए ही उस लीला का दर्शन करते हुए उसका वर्णन कर रहे थे। कलयुग जब 30 वर्ष का था, 30 वर्ष का बच्चा था कलयुग, तब कथा सुनाई सुखदेव गोस्वामी ने। और ये भगवान की बाल लीला है। प्रभु कितने वर्ष थे पृथ्वी पर? कितने थे? 125 वर्षों तक रहे भगवान। और ये बाल लीला है। और भगवान अपने धाम में लौटने के उपरांत 30 वर्ष बीत चुके थे और फिर सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं। ऐसे सुना रहे मानो यशोदा उनके समक्ष है। ताम स्तन्य काम आसाद्य मतनंती जननीम हरिः, सारा वर्णन है। तो उस प्रातः काल को यशोदा ने, यशोदा कृष्ण के पास नहीं गई, उनको जगाने नहीं गई थी। उठी उठी गोपाला, ऐसा नहीं किया उसने उस दिन, ऐसा गीत गाया नहीं, सीधे गई उसने अपने घर का कार्य शुरू किया। तो कृष्ण अपने आप ही जग गए, थोड़े देरी से जगे होंगे। यशोदा ही अलार्म क्लॉक बन के आया करती थी, ए उठो उठो लाला उठो। तम स्तन्य काम, तो दूध पीने की कामना हुई। कृष्ण में कोई कामना नहीं होनी चाहिए, भगवान और उनमें कामना, तो ये विरोधाभास वा विरोधाभास। कृष्ण और उनमें कामना तो संभव ही नहीं है, ऐसे हम सोच सकते। लेकिन यहां स्तन्य काम, दूध पीने की कामना, और वो भी अपने यशोदा मैया के स्तन का दूध, स्तनपान। यशोदा च महाभागा, यशोदा बड़ी महाभागा का, इनके स्तनों का हरि स्वयं दूध पिया करते थे, ऐसी भाग्यशाली उमैया का दूध पीने की। जगते ही उनको स्मरण हुआ, किसका स्मरण हुआ होगा? प्रातः स्मरणीय कृष्ण के लिए प्रातः स्मरणीय कौन है? कृष्ण के लिए प्रातः स्मरणीय कौन है? यशोदा माता। और कौन है? नहीं, दूध यशोदा और यशोदा का दूध का स्मरण। जगते ही बालक तो उसको भूख लगती है, पिछले 10 घंटों से फास्टिंग चल रहा है। तो स्तन्य काम तो आए और मंथन को रोक दिए। ग्रहित्वा दधि मंथानम, स्नेह स्नुत अतृप्त उत्सृज्य जवेन याययो उच्चिच्यमाने पयसी द्वधिश्रिते। तो इतने में सब पूरा लीला है। दूध पान स्तन पान करा ही रही थी कृष्ण को, इतने में क्या हुआ? किचन की ओर से कुछ ध्वनि सुनी। दूध जो रखा था चूल्हे पर वो उफन रहा था, वो बाल ज्यादा बॉइलिंग होके बाहर गिर रहा था, उसकी आवाज। दूध जब आग में गिरता है तो उसकी आवाज आती है ना, आपने सुनी है कि नहीं? वेरी गुड। तो वो सुनाई दी, तो यशोदा ने लाला को वही पटक दिया और रसोई की और दौड़ी हो, रसोई घर की ओर दौड़ी। कन्हैया बड़े क्रोध में, पहले तो मुझे जगाने नहीं आई है? और फिर अपने आप मैं स्वयं ही चल के आया, मेरी ब्रेकफास्ट चल ही रही थी, तो बीच में उसने उसको ऐसे फेंक दिया, इसे मुझे पूछा भी नहीं, एक्सक्यूज मी कृष्णा, ऐसा कुछ नहीं कही, मेरा अनुमति नहीं ली, कुछ भी नहीं, ऐसे फेंक दिया। कृष्णा इज एंजॉइंग, कृष्ण को अच्छा भी लगता है कि ऐसे ऐसे फेंक दिया तो अच्छा भी लगता है, लेकिन बाहर से क्रोध भी प्रदर्शित कर रहे हैं। ये भृत्यवश्यता है, बड़े ही आनंद कुंडे, स्वयं को भी स्वघोषम निमज्जंतम, अपनी जो लीलाएं अपने धाम में जो लीला प्रभु कर रहे थे, सभी को आनंद, स्वयं भी आनंदित और औरों को भी आनंद। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, ब्रज जनों के रंजन को उनको आनंद दिया, उनके मनोरंजन उनके आत्मरंजन करते ही रहते हैं कन्हैया, और उससे स्वयं भी रंजित हो जाते हैं, औरों को आनंद देते हैं औरों से आनंद लेते भी हैं। ऐसी लीला में कृष्ण को आनंद, तो एवं कहा है ये सारा पहले के जो 18 श्लोकों में। तो पहले तो हुआ लीला कही है, सुखदेव गोस्वामी लीला कहे, और यह क्या कह रहे सिद्धांत कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो इतने दिनों से आप हर रोज क्या कर रहे थे, भगवान का जन्म भगवान की लीला का श्रवण अध्ययन चल रहा था स्मरण, और आज यहां पर क्या कहा जा रहा है उसके पीछे का जो तत्व है, जो सिद्धांत पक्ष सिद्धांत बताया जा रहा है, कुछ कमेंट्स बताए जा रहे हैं। हां ये सारी लीला है आप जो सुन रहे थे, एवं इस प्रकार संदर्शिता हे अंग, तो अंग राजा परीक्षित को सुना रहे प्रभु, हरिना भृत्यवश्यता प्रभु द्वारा ये किस बात का प्रदर्शन हो रहा है, भृत्यवश्यता अपने सेवक के वश्यता, स्ववशेन अपि कृष्णेन यशेदम सेश्वरम वशे। वैसे प्रभु के वश में सारा संसार है, स्ववशेन अपि ऐसा होते हुए भी, अपि कहा है ना, स्ववशेन अपि इन स्पाइट ऑफ दिस, ऐसा होते हुए भी, अपि जोड़ के उसको क्या कर दिया, उल्टा बना दिया, किंतु किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य, तो अपि किंतु तो अपि कह दिया, स्ववशेन अपि कृष्णेन, और कैसे कृष्ण और उनकी उनका जो वश है उनका नियंत्रण किन पर चलता है, यश इदम, यश मते सारा संसार है, अंडांतरस्थ परमानुचयांतरस्थम, भगवान उनके वश में सभी है, क्या क्या है, ब्रह्मांड भी है, ब्रह्मांड उनके वश में है सारा ब्रह्मांड, और परमाणु चयांतरस्थम, परमाणु भी है। परमाणु से क्या बना है, क्या बना है परमाणु से? परमाणु से तो ब्रह्मांड बना है। द स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे दीवार किसकी एक 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 ईंट की बनी होती है ना, द स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कह सकते हैं दीवार का क्या होगा, क्या है दीवार का? ईंट है, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो उसी प्रकार ये सारे ब्रह्मांड का सबसे छोटा जो यूनिट है उसको एटम कह रहे शास्त्र ने, क्या कहते हैं एटम है, अणु अणु रेणु, तो उसमें भी भगवान है। अंडांतरस्थम, अंड में ब्रह्मांड में भगवान है, तो वहां है तो फिर उनकी उनके वश में सारा ब्रह्मांड है। मयाध्यक्षेन प्रकृति, और फिर छोटे से छोटे भगवान बड़े से बड़े बनते हैं, कितने बड़े समा जाते सारे ब्रह्मांड में, या सारा ब्रह्मांड उनमें है, ऐसा भी ऐसी बात आई है। भगवान कैसे हैं? नमस् नमस्ते स्तुदाम्ने स्मृदीप्ति धामने त्वदीयोदरायथ विश्वस्य धामने। तो यह कौन से मुनि थे? सत्यव्रत मुनि। सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या करें प्रार्थना में? नमस्ते अस्तु, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए हे प्रभु। नमः ते अस्तु, मेरा नमस्कार आपके चरण। नमः, मेरा नमस्कार किनको? आपको। नमस्ते अस्तु दामने, और डोरी को नमस्कार, ऐसे नमस्ते आपको, जैसे आपके पहले वो जो डोरी है ना, दामोदर, मतलब यशोदा ने एक प्रकार से दमन किया, ऐसा भी समझा रहे, दम उदर, जैसे डोरी से बांध के दमन किया ऐसा, कृष्ण को बांध दिया, बांधा उखड़ाला याला, बांधा उखड़ाला, नंदाचा पोर याला बांधा उखड़ाला, नंदाचा पोर याला काय करा, बांधा बांधून टाका, उखड़ाला बांधा, असं म्हणतं की नाही पण, बांधा उखड़ाला, तो उखल के साथ जो बांध दिए है जिस डोरी से, तो उस डोरी को मेरा प्रणाम। नमस्तेस्तु दामने, दाम दाम मतलब डोरी। नमस्तेस्तु दामने स्फुरदीप्ति धामने, और आप उस डोरी से और आपसे जो हुआ दीप्ति, जो प्रकाश दैदीप्यमान, आपने प्रकाश जो निश्रित हो रहा है उस प्रकाश को, उस ज्योति को भी मेरा नमस्कार। नमस्ते स्तु दामने स्फुरदीप्ति धामने त्वदीयोदरायथ विश्वस्य धामने, और किसको नमस्कार मेरा? एक तो डोरी को, एक तो दूसरा उस तेज को, महा तेजस्वी जो आपको, और साथ ही साथ त्वदीय, आपके त्वदीय उदर, आपका वो पेट, त्वदीयोदर, आपके पेट को मेरा नमस्कार। आपके पेट को जिसको बांधा जा रहा है ना, पेट को डोरी से बांधा जा रहा है, उस पेट को भी मेरा नमस्कार। और कैसे पेट को नमस्कार? विश्वस्य धामने, जो विश्व का धाम है, जो सारे विश्व का जो आश्रय है वो पेट, उस पेट को मेरा नमस्कार। जैसे यशोदा को आ आ आ करो, आ आ आ, ऐसा जब किया, आ करो मतलब आ, ओ आ करो, ओ करो आ करो, फिर आह होता है, फिर तीसरा हो गया प्लुत ओ आ आ। तो कृष्ण ने जब आ किया आ तो क्या देखा, मुख में पेट में कृष्ण में क्या देखा, ब्रह्मांड था कि नहीं, कृष्ण में ब्रह्मांड था। तो त्वदीय उदर अथ या यस विश्वस्य धामने, जो सारे विश्व का जो धाम है तुम्हारा ये उदर तुम्हारा ये पेट उसको भी मेरा करो, आप नमस्कार करो। उत्तर भारत में जब कथा होती है तो माता एक ऐसा करती रहती, नमस्कार करती है, क्या क्या करती रहती है, मतलब वो मूड में आ जाती है कथा के, कथा में तल्लीन होती है तो उसके साथ वो भी सब उनके हाव भाव चलते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे कृष्ण जो विश्व के आधार है, विश्व ही जिनमें है, तो यशोदा डोरी के बाद डोरी के बाद डोरी ला रही थी, बांध रही थी, तो क्यों बांध नहीं पा रही थी। वैसे तो वो तो सोचती थी, तो सोचती थी कि कृष्ण का जो कमर है कितना बड़ा है, 18 इंच होगा ऐसा कुछ, इतना ही और कोई बड़ा तो फुल तो नहीं रहा था, जैसे बलून की तरह कृष्ण को जैसे बड़े तो नहीं हो रहे थे, जितने थे उतने ही थे कि नहीं, लेकिन डोरी पूरी नहीं पड़ रही थी। हर समय क्या हो रहा था, आप पढ़ चुके हो सुन चुके हो, दो उंगली शॉर्ट। तो किसको बांध रही थी यशोदा, कैसे पेट को बांध रही थी, जिस पेट में क्या है, विश्वस्य धाम ने, जो सारे विश्व का धाम है। जैसे कृष्ण को भी जगन निवास, कृष्ण कैसे है जगन निवास, जगत के जो निवास है, निवास समझते ना, निवास घर, निवास में निवासी होता है, तो कृष्ण निवास है और निवासी कौन है, निवासी क्या है, सारा जगत निवासी है, उस निवासी में जगन निवास, जगत के जो निवास है, ऐसे कृष्ण। तो दोनों भी जानना है, ऐसे कृष्ण ऐसे होते हुए भी अपि जो यहां कहा है, अध्याय बदल गया क्या, अध्याय 9 chapter, ओके। तो सो वशेन अपि कृष्णेन, तो ऐसे कृष्ण, तो दोनों को समझाया जाए, ऐसे कृष्ण, इतने महान कृष्ण, यशेदम शेश्वरम वशे, सारा ब्रह्मांड उनके वश में है, पूरा ब्रह्मांड, और फिर ब्रह्मांड का जो जो सबसे छोटा जो अंग अंश है, अणु है, परमाणु चयांतरस्थम, परमाणु में भगवान है, उस पर भी भगवान का नियंत्रण है, और फिर स ईश्वरम, ये जगत ये ब्रह्मांड के ऊपर भी भगवान का नियंत्रण है, और इस ब्रह्मांड के जो ईश्वर सहित, यहां के ईश्वरों सहित जो 33 कोटि देवता है उनके सहित भगवान वशे, जिनके वश में है, ऐसे भगवान भृत्यवश्यता, अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। एक और उनकी महानता यहां समझाई जा रही है, महान तो भगवान है ही, तो महान के कैसे वे लहान बन जाते हैं, महान के क्या बनते हैं, लहान, महान भगवान दोनों भी है, महान भी है और लहान भी है। लहान एक शब्द आना चाहिए, मराठी हिंदी में शब्द डाल सकते हैं हम लोग, इसको उपयोग करेंगे तो लहान लहान मतलब लोग समझेंगे लहान क्या होता है, छोटा, बड़े से बड़े छोटे से लहान छोटा सा। ये समझना, ये समझना, भक्तैर जितत्वम है ना, तदीयेषु तद्देशु भक्तैर जितत्वम, भक्तै मतलब, भक्तै मतलब रामै मतलब राम के द्वारा, भक्तै मतलब भक्तों के द्वारा, और भक्तै जितत्वम जीते जाते हैं, जीतता है कौन, भक्त जीत जीत जाते हैं, हरता है कौन, कृष्ण हर जाते हैं, भक्तै जितत्व। तो इस लीला में क्या देख रहे हैं हम लोग, इस जो उखल बंधन लीला में हारे कौन, कृष्ण हार, भगवान हार गए, जीत गई कौन, यशोदा जीत गई। और ये सब केवल संभव है प्रेम, प्रेम से संभव, भक्त का प्रेम है तो उनके वश में भगवान हो जाते हैं। तो सख्य भाव में, सख्य वात्सल्य माधुर्य, तीनों भावों में, तीनों रसों में, उस रस के जो भक्त है, वात्सल्य रस, जिनके साथ भगवान का क्या संबंध है, किस प्रकार का वात्सल्य भाव, यह यशोदा और कृष्ण का कौन सा भाव है, कौन सा रस है, कौन सा संबंध, इसको संबंध भी कहते हैं रस, अलग अलग संबंधों से अलग अलग रस, अलग अलग आस्वादन, अलग अलग प्रकार का सुख आनंद प्राप्त होता है भगवान को। तो एक संबंध है वात्सल्य रस और दूसरा है सख्य रस, सखा भाव। तो भगवान सखा भाव का अनुभव करना चाहते हैं। सख्य भाव की क्या विशेषता होती है, सख्य भाव मतलब क्या होता है, कौन कौन सखा बन सकते हैं, इक्वल, अगर इक्वल है तो जो समकक्ष है, एक ही श्रेणी के है, तब क्या होगा, तब मैत्री होगी, तब सख्य होगा। तो भगवान क्या करते हैं, उस सखा भाव में अपने मित्रों के समकक्ष बन जाते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, खेलते हैं, और खेल में कई बार क्या होते हैं, हार जाते हैं। जिस दिन कौन से आए थे, प्रलंबासुर जब आए थे ना, प्रलंबासुर उसमें हार गए, उस दिन हार गए, बलराम की पार्टी जीती थी, बलराम और कृष्ण के पक्ष में ही थे, कौन, प्रलंबासुर, कृष्ण ने अपने पक्ष में रखा प्रलंब, अच्छा मित्र, अच्छा, वेरी गुड फ्रेंड। एक मित्र की वेशभूषा, सारा स्वरूप बना के, एक मित्र उस दिन आया नहीं था, इवेंट आउट ऑफ स्टेशन, सारे ग्वाल बालक तो वही बालक वही थे, लेकिन एक मित्र उस दिन आया नहीं था। इस चालू आसुर ने पता लगवाया कौन सा मित्र आज नहीं आया है, तो उस मित्र का रूप धारण किया उसने। सबको लगा कि ये तो हम हर रोज का मित्र है, अपना मित्र है, लेकिन कृष्ण तो हा यू चालाक समझ गए हम कौन है, तुम कौन हो। किसी को कहे नहीं, केवल बलराम को बोला, ए बलराम थोड़ा देर किए इसलिए, तो कहेगी ये जो है वो वाला, वो नहीं उसके बगल वाला, हाँ उंगली भी नहीं दिखानी थी ना, ऐसे वर्णन करके सुना रहे थे, उंगली करके दिखाएगी तो समझ जाएगा, सावधान होगा, कुछ अदृश्य हो सकता है, पलायन कर सकता है। तो बड़े चतुराई से फिर तुरंत ही ऐसा खेल प्रारंभ किया। तो कृष्ण की पार्टी और प्रलंबासुर की पार्टी हार गई, तो फिर क्या करना था, घोड़ा बनना था, सवार होंगे, जो जीते वो बैठेंगे कंधे पर। तो बलराम को बिठाए, बलराम बैठे प्रलंबासुर के कंधे पर, और लोग अलग अलग मैच बन गए जोड़ी। तो हुआ तो ये सख्य भाव, ये वात्सल्य भाव, फिर माधुर्य भाव जो है और भी अधिक अधिक गाढ़ा बनता है, एक से दूसरा भाव सख्य से अधिक अधिक गाढ़ प्रेम है, वात्सल्य भाव में वात्सल्य से भी अधिक मधुरता है। किस भाव में, माधु माधुर्योज्वल उन्नत रस कहा इसको। समर्पी तुम, अभी अभी जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, 10-11 दिन पहले, आज एकादशी है ना, तो 11 दिन पहले पूर्णिमा हुई, उस दिन जो प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु, किस लिए प्रकट हुए, अनर्पित चिराम चरित या उन्नत उज्ज्वल रसा, समर्पी तुम देने के लिए, क्या देने के लिए, समर्पण करने के लिए, क्या समर्पण करने के लिए, उन्नत उन्नत उज्ज्वल रस को प्रदान करने, कृष्ण प्रेम प्रदायते, उन्नत उन्नत मतलब ऊंचा, सबसे उन्नत और उज्ज्वल प्रकाश भी इसका, ज्योति इसके साथ, ऐसा उज्ज्वल रस को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संसार को दिए, माधुर्य रस, तो सबसे अधिक ऊंचा रस, अधिक अत्युत्तम मीठा रस जो संबंध है वो कौन सा है, माधुर्य रस, जिसमें तो भगवान और भी उनकी जो भृत्य वत्सलता जो है, भृत्य वश्यता और भी बढ़ जाती है, भगवान और झुक जाते हैं और नियंत्रण में आ जाते हैं, गोपियों के फिर राधा रानी के भी, राधा रानी का खूब नियंत्रण चलता है कृष्ण पर, नचाती रहती है, कठपुतली बनाती है कन्हैया को, ऐसी है राधा रानी, इसलिए कुछ लोग पसंद नहीं करते राधा रानी, हमारे कृष्ण को ऐसा क्यों करती रहती है, मतलब वो कृष्ण को नहीं समझते कि कृष्ण कितना आनंद लूटते हैं उस संबंध से। जयदेव गोस्वामी का नाम सुने, जयदेव गोस्वामी की, तो जयदेव गोस्वामी एक समय ग्रंथ लिख रहे थे मायापुर नवद्वीप में, तो उनको यह प्रसंग लिखना था कि कैसे कृष्ण राधा रानी के वश में या वशीभूत होके राधा रानी के चरणों में गिरना पड़ता है, उनको प्रणाम करो, चलो बाव डाउन मिस्टर, बाव डाउन, ऐसी गोपियां कहती, ये रानी है महारानी की जाय, कभी कभी मैं राजा हूं तुम रानी हो ऐसा खूब चलता है। तो गोपियां कृष्ण को पकड़ के लाती है जो राजा है, मैं राजा हूं तो महारानी के चरणों में झुकाती है कृष्ण को। कभी कभी राधा रानी के चरणों की सेवा करनी पड़ती है, पाद संवाहन। तो इस प्रसंग को लिखना था जीव जयदेव गोस्वामी को। लिखते 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 वहां तक वे पहुंचे थे। क्या उनको लिखना था कृष्ण कैसे राधा रानी के चरणों में झुकते हैं, सेवा करते हैं? उनको बड़ा आनंद आता है, वैसे उनको तो आनंद आता है उस सेवा में, उस संबंध में। लेकिन जयदेव गोस्वामी सोच रहे थे, नहीं ये कैसे संभव है। उनका मन थोड़ा स्वीकार नहीं कर रहा था इस बात को। उनकी लेखनी चल नहीं रही थी आगे ऐसा लिखने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लिख सकता, इसे थोड़ा ही होता है, मेरे कृष्ण न कृष्ण पक्ष के होंगे वे, कृष्ण पार्टी। तो उनका पूरा भाव उदित नहीं हुआ था, तो उन्होंने लिखना बंद कर दिया। तो अपने धर्मपत्नी को कहे कि मैं अभी भी स्नान करके आता हूं, तो स्नान करने गए गंगा के तट पर। यस कम इन कम इन, तो दरवाजा बेल बजी, तो दरवाजा खोला, पद्मावती जयदेव गोस्वामी गृहस्थ थे, बड़े उच्च कोटि के आदर्श गृहस्थ, शुद्ध भक्त थे, गृहस्थ थे और साथ ही साथ प्योर डिवोटी, ये नहीं कि ब्रह्मचारी सन्यासी, प्योर डिवोटी। भक्ति विनोद ठाकुर भी प्योर डिवोटी, ऐसे कई उदाहरण है। प्रभुपाद एक समय गृहस्थ तो थे। तो हुआ, उसने दरवाजा खोला, जयदेव गोस्वामी, और इतने में आप आ भी गए। अब वो आए और इज लंच रेडी? हाँ अभी अभी थाली बनाती हूं, अभी भी भोग लगाया तो है। तो थाली जो बना रही थी पद्मावती, तो ये व्यक्ति जो आए थे अभी अभी लौटे थे, वे कहां गए? जहां लिखाई पढ़ाई का जहां कार्य होता था अपने घर के जिस कक्ष में, वहां गए और उन्होंने कुछ लिखा और भोजन के लिए बैठे। पद्मावती ने भोजन खूब बड़े प्रेम से खिलाया और फिर व्यस्त हुई पद्मावती अपने और घर कार्य में। इतने में पुनः, अरे अब कौन आया? तो कई बार वो बजता रहा, उसने सोचा कि बेकार का कोई, मैं तो व्यस्त हूं। तो पुनः दरवाजा जब खोल ही दिया पद्मावती ने, पुनः देखती है वहां जयदेव गोस्वामी अपने पतिदेव। तो भ्रमित हुई, द्विधा में पड़ी, ये क्या मैं देख रही हूं। और वे भी कहते हैं थोड़ी मुझे देरी हुई आज, थोड़ा भोजन, क्या भोजन अभी तो खाया। अभी भी आए थे आप भोजन खाए, कुछ वहां जाके लिखा, आपने लिखाई का कार्य भी थोड़ा पूरा किया। ये जब बातें सुनी जयदेव गोस्वामी, तो दौड़े अपने जो लिख रहे थे वहां नोटबुक खोल के देखते हैं तो जो लिखने में उनको स्वयं को बड़ी कठिनाई महसूस हो रही थी कि ये नहीं, ये तो संभव नहीं है, वो सारा प्रसंग वह लिखा हुआ उनको मिला। हा हा, कृष्ण ऐसे करते हैं, राधा रानी के चरणों में झुकते हैं, सेवा करते हैं, ये सारा वहां लिखने को कई पैराग्राफ्स वहां और इतने सुंदर अक्षरों में लिखा था, ऐसा अक्षर किसी को लिखते हुए नहीं देखा था। और फिर उसने और भी समझा, हाँ हाँ भोजन भी हुआ और आप बड़े सुंदर लग रहे थे उस रूप में, तो ये जयदेव गोस्वामी समझ गए। क्या समझे होंगे, जो आए थे स्वयं कृष्णा, स्वयं कृष्णा स्वयं लिखे वो प्रसंग, स्वयं पद्मावती के हाथ का पकाया हुआ और परोसा हुआ भोजन को भी आनंद से ग्रहण करके प्रभु अंतर्धान हुए थे। तो ये दोनों पति पत्नी जब को समझ में आया क्या घटना घटी अभी अभी अद्भुत, तो दोनों नृत्य करने लगे, रीव 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 गौर हरिवो गौर हरिवो। उनके शरीर कांपने लगे, आंखों से गंगा जमुना नदियां मानो बह रही थी, इतने सारे आंसू, अपने घर में लौटने लगे, कृष्णा कृष्णा कहकर रोमांचित उनका शरीर, कृष्णा आए थे, कृष्णा है कृष्णा, हमारे कितनी कृपा हुई प्रभु की। तो ये जयदेव गोस्वामी का अपना निजी अनुभव रहा। जिससे हम आज का जो थीम है, विषय है, भक्त वश्यता, भक्त भगवान अपने भक्त के वशीभूत होते हैं, प्रेम का वश, प्रेम तो तात्पर्य में प्रभुपाद और भी कई उदाहरण, पार्थसारथी के उदाहरण दिए हैं, कैसे भगवान ड्राइवर बने हैं अर्जुन, ऐ यहां ले चलो मेरा रथ, स्पीड अप, तेजी से चलो, यहां रोको, ये वो सब आदेश हो। इस प्रकार असंख्य उदाहरण है, ऐसे कृष्ण को वैसे संसार नहीं जानता है। वैकुंठ के कृष्ण या वैकुंठ के विष्णु या वैकुंठ के कई जो अवतार है उनसे तो कुछ थोड़ा परिचय है, किंतु ये जो कृष्ण, इस प्रकार के कृष्ण और ये वात्सल्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, या भगवान के अपने निज धाम की जो लीलाएं हैं, गोलोक की लीला, गोकुल की लीला, ये बड़ी मधुर लीला है। जो कृष्ण को स्वयं को ही अधिक पसंद, इद्रिक इद्रिक स्वलीला भीर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम अख्यापयंतम, भगवान क्या कर निमज्जंतम, डुबकी लगाते हैं, तैरते हैं उस आनंद के कुंड में, आनंद कुंडे, वो आनंद का कुंड कितना बड़ा है, जितना उनका धाम है, सारा गोकुल ही क्या बनता है, एक आनंद का कुंड है। स्वघोषम निमज्जंतम अख्यापयंतम, और इसकी चर्चा, इसका ख्याति कि भगवान के गोकुल लीला, वृंदावन लीला, और वहां जो आनंद, वो तो कृष्ण अकेले आनंद नहीं लेते, वैसे उन्होंने ये सारे जीवों को बनाया है, हमको भी बनाया है। क्यों? ताकि भगवान हम सभी से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक भगवान अनेक हुए। कब हुए वो मत पूछना, इतिहास कितने बजे हुए हम लोग, जैसे एक समय तो राधा कृष्ण एक ही थे, फिर एक के क्या हुए, दो हुए, गतौ तौ द्वौ गतौ तौ, वो दो हुए, एक ही थे, राधा कृष्ण प्रणय आह्लाद विकृति रस्मात्, भगवान के जो प्रेम के व्यापार है, आह्लाद शक्ति है, तो ये कृष्ण दो होके फिर उनका आह्लाद प्रह्लाद प्रह्लाद आह्लाद दायिन, कितने अच्छे शब्द है, क्या क्या पहले क्या कहना चाहिए, पहले कौन सा शब्द है, प्रह्लाद कही आह्लाद कही आह्लाद कहिए आह्लाद आह्लाद नहीं कहना, ह भी है वहां आह्लाद, कुछ शब्द खाते हो आप, शब्द नहीं खाना, आह्लाद प्रह्लाद प्रह्लाद आह्लाद प्रह्लाद आह्लाद दायिने, ऐसे कहना चाहिए, प्रह्लाद आह्लाद दायिने, प्रह्लाद को आह्लाद देते हैं भगवान, प्रह्लाद आह्लाद दायिने देना, और उनसे आह्लाद स्वयं भी लेते हैं। भगवान जो चाट रहे थे ना, देखिए ये जगह पर हमने दर्शन किया, नरसिंह भगवान प्रह्लाद को उन्होंने क्या किया था, गोद में लिया था और चाट रहे थे, वो सिंह जो थे ना, सिंह सिंह क्या करता है, चाटता है, तो भगवान वैसे चाट रहे थे, उससे भगवान को क्या मिल रहा था, आह्लाद मिल रहा था, आह्लाद दोनों को भी, प्रह्लाद को भी आह्लाद दे रहे थे और प्रह्लाद भी भगवान को आह्लाद दे, आदान प्रदान। तो किसी ने फिर पूछा या कुछ कि भगवान नरसिंह बने ना, तो ये ऊपर वाला तो सिंह और नीचे मनुष्य थे, तो उल्टा भी हो सकता था, इतने शेर और ये मनुष्य होते तो फिर चाट सकते थे क्या, वो मनुष्य बनते तो चाट सकते थे, फिर चाट के जो आनंद आता है, चाटने में जो वत्सलता है, जैसे गाय चाटती है बछड़े को, इसीलिए वत्सलता अगर कहनी है तो फिर वत्स बछड़ा और गाय का स्मरण होता है। तो यहां भी शेर योनि में भी सिंह की योनि में चाटने का, तो इसलिए भगवान अपना मुख तो सिंह जैसा और बचा हुआ जो शरीर है वो शेर मनुष्य जैसा बन। तो ये प्रह्लाद आह्लाद, तो आह्लाद भगवान को हम सभी को भगवान बनाए, ताकि हम सभी से क्या करना चाहते हैं, आह्लाद प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम होगा हमारा भगवान से तो क्या होगा, भगवान को हम आनंद देंगे, लेकिन हम लोग भगवान को केवल ऑर्डर ऑर्डर सप्लायर। भगवान कौन? ऑर्डर सप्लायर। हम लोग हर संडे को आके यहां क्या करेंगे? ऑर्डर देंगे। वो फ्रिज तो दे दिया प्रभु, लेकिन अभी तक वॉशिंग मशीन कहां है? चलो फ्रिज दे दिया तो नारियल तो ले लो उसके बदले में, नारियल फोड़ते हैं तुम्हारे, थैंक यू। लेकिन अभी तक काफी बाकी है। सुख संपत्ति घर आवे, बस इसलिए आपके घर आए हैं ताकि हम जब जाएंगे तो क्या हो, हमारा घर सुख संपत्ति से भरा हो। ऐसे जो व्यापार करने के लिए लोग आते हैं प्रभु के पास, उनसे कोई आनंद नहीं मिलता, भगवान को कोई आनंद नहीं मिलता। आनंद देने वाले भक्त तो भगवान से जो प्रेम करते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते, चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम दिया, प्रेम सिखाया, तो वही भगवान जो पहले थे एक, एक के हो गए दो, फिर दो के पुनः एक हो जाते हैं, ऐसा इतिहास है। पहले थे एक, एक के दो हुए, दो के पुनः एक हुए, तो वो कौन हुए? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी है, फॉलोअर्स है, तो भगवान को क्या करते हैं? आनंद देते हैं। आनंद लेते भी है, प्राप्त भी होता है, उसी में आनंद है जीव को। कोई प्रश्न है?
House of the universe, and also the Lord is the one who is the resident in the universe. But I'm not totally. I was wondering, is it that the universe is the house for the Lord, or is the universe, the Lord is the house for the universe?
Well, in case of Mahavishnu, what is the case? Let's go to the Mahavishnu. Where are all the Brahmandas? They are all inside him. He is abode, he is a source, he is a shelter of the whole, all the Brahmandas. So Jagan Nivas, Jagat Nivas, he is Nivas of residence for all the Brahmandas, all the universes. So Mahavishnu is outside and all the Brahmandas are inside him. And then through the pores of his body, all the Brahmandas, like when we perspire, we work very hard. So our body is like a shelter or abode for the water inside the body. Some of that water, which is inside our body, comes outside through the pores. So likewise, so the Brahmandas are inside the Lord in case of say Mahavishnu. Our Lord says, Aham Sarvasya Prabhavaha Mattaha Sarvam Pravartate. Aham Sarva, I am the source of, I am cause, I am source of everything. So all the universes are in him, they are coming out of him, and like that. Then he enters also. He is in, he becomes inside. Sometimes we describe how Kshirodakshay Vishnu is a kind of soul for the universe. He is a soul of the universe. Like our body has a soul. Body is like a universe, and ours, and the Garbhadakshay Vishnu is like a soul of that universe. So he's within the universe. He's outside. I mean, again, in order for him to be complete, he should be inside the universe, he should be outside the universe. So he's outside the universe in case of Mahavishnu. The universes are outside Him. No. The other way around. They are inside Him. And then once the universe is there, Lord enters as Garbhadaksha Vishnu. And then Andantarastham. That Brahma Samhita word. Andantarastham. He is inside. He enters not only the universe, but He also enters each and every atom. So first He is outside as Mahavishnu, and the universes are inside, and then once the universes are out there, He goes in there, inside, He enters the universes. So it could be explained both ways. It could be understood both ways, because it is both ways also. But the technical meaning of the dhamni, that what is that? Tadiyodarayata Vishvasya dhamni. You are dham of Vishwa, means whole Vishwa is inside you. And then we were explaining, because Vishwa is inside Krishna also. On that Diwali day, whole universe is inside Him. And that is why Yashoda is finding hard time to tie Him, because how much long rope you would require to just to tie the earth, you would require 25,000 miles or kilometers. Circumference of the earth is 25,000 miles or kilometers. Is it miles or kilometers is the question. 25,000 is correct. Any one of those things. 25,000 miles. So just to tie the earth, just one planet, Yashoda would need how much rope? 25,000 mile long rope. And then tie another planet. And because all these planets are in Krishna, and the whole universe is also in her, so although she is not seeing Krishna expanding, but that is what she is trying to tie. Tie the belly of the Lord, which is abode of the universe, or shelter for the universe. Something like that.
Paramatma
is in every atom, yes?
So this one body consists of many atoms. So this body, there are many
millions
of
Paramatma. What else could we say? So not only He is in the heart as Paramatma, but in each atom which the heart is made up of. Of how many atoms heart is made up of? Billions and trillions of little atoms. His Lord is there. Kan kan mein Bhagwan. You have heard this? Kan kan mein Bhagwan. Every kan, every atom, Lord is there. Yeah, Lord is within every atom. If the scientists were to find super microscope so that they could see within the atom, they will see Paramatma. One day they keep going, making the power of their microscopes bigger and stronger. Yeah, that's the technical meaning. Well, how it is, you take a tip of hair. You see the hair? It's there. Hair is there. But do you see? You don't see. So you could cut. So there are already 1,000 Paramatmas I'm holding in the hair that is in my hand between these two fingers. There are Paramatma. So He's like that. In that sense, He's all pervading. He's everywhere. He's inside. He's outside. And not again as in the form of the light of Brahma Jyoti, but as a Paramatma, Super Soul. So He's not only Super Soul of our body, but He's Super Soul of the universe, Super Soul of an atom. So there is no place where He doesn't exist. He is everywhere in that sense. So it is for those who have eyes to see, they could see Lord everywhere. Microphone chalak na. Krishnamadhya Ranga. त्यासाठी सत्संगाची आवश्यकता आहे. ज्या प्रकारचा संघ त्या प्रकारचा रंग नाही का. प्रत्येक संघामध्ये एक वेगळा वेगळा रंग. त्या भक्तांच्या संगतीमध्ये जो रंग आहे, जी रंगत आहे, जी संगत रंगत, त्याचा गोडवा पण चाखला की मग आपण विषय आनंदामध्ये फसणार नाही. एक विषय आनंद आहे, दुसरा एक भजन आनंद. भजन आनंद, विषय आनंद, परम दृष्ट्वा निवर्तते. कृष्ण म्हणतात गीतेमध्ये एकदा, उच्च जी रुची आहे कृष्णामध्ये, जो गोडवा आहे कृष्णाच्या भक्तीमध्ये, कृष्णाच्या लीलेमध्ये, तो एकदा चाखला की परत आपण या विषय आनंदामध्ये बस फसणार नाही. ते उत्तर आहे, उपाय आहे, साधुसम साधुसम सर्वशास्त्रे कौन लव मात्र साधुसंगे सर्वसिद्धि हो. उरलेलं आयुष्य तर द्या. हे संपूर्णच आयुष्य दिलं असं चांगलं झालं असत. तरुणपणामध्ये जे काय शिल्लक राहिलेलं आहे, सडलेलं आहे, नाचलेलं, तारुण्यामध्ये आपण ज्यावेळी आपण ताजी फुलं ताजी फळं असतो, त्यावेळी समर्पित करायला हवीत भगवंताच्या चरणी. त्यावेळी त्या फळांचा आणि फुलांचा आपण उपभोग घेतो. म्हातारपणामध्ये सर्व फुलं कोमेजलेली आहेत, फळं नाचलेली आहेत, मग आपण ती घेऊन येतो. अशी अडचण आहे. कलीचा प्रभाव वगैरे वगैरे आहे, पण जेवढं शिल्लक आहे कमीत कमी तेवढं तर कधीच उशीर होत नाही, कधीच म्हण येईल, कधी लवकर नाही, टू अर्ली असत नाही, कधी टू लेट च्या गोष्टी नाही. सुरुवातीलाच कौमारम आचरेत प्राज्ञो, कुमारावस्थेमध्ये जर आपण या मार्गाला लागलो तर सर्वोत्तम गोष्ट. या जगाच्या संगतीमध्ये, या जगाच्या रंगतीमध्ये आपण दंग होतो. मग बांबू एकदा सुकला वाळला की त्याला त्याला आकार देणं वळवणं कठीण होतं की नाही, मग तुटतो तो बांबू. ज्यावेळी हिरवा आहे किंवा नवा आहे त्यावेळीच आपण वळलो तर सर्वोत्तम वेळ आहे ती. पण जे काय करू शकतो आपण, खटवांग मुनी होऊन गेले, खटवांग मुनी, त्यांच्याकडे जास्त वेळ नव्हता, पण त्या उरलेल्या वेळामध्ये त्यांनी फारच काही क्षणच शिल्लक होते. राजा परीक्षित चिंता होती की 7 दिवसांमध्ये म्हणे मी कसा कृष्ण भावना भावित होणार. आपण म्हणता की अंते नारायण स्मृती, अंती अंतिम काळी काय करायचं, नारायणाची स्मृती, पण 7 दिवसांमध्ये कसं शक्य असं त्यांना, हे होईल की नाही, शक्य अशक्य असं चिंता होती राजा परीक्षितला. त्यावेळी तिथे उत्तर दिलेलं आहे की म्हणे उदाहरण कुणाचं दिलं, खटवांग मुनी. खटवांग मुनीकडे जास्त वेळ नव्हता, 7 दिवसही नव्हते, 7 तासही नव्हते, 7 मिनिटंही नव्हती, फार थोडा वेळ होता. पण तेवढ्या वेळामध्ये, उरलेल्या वेळामध्ये त्यांनी असं काही मन केंद्रित केलं, एकाग्र केलं, या जगातले जे अनुभव आहेत त्यांचं ध्यानही केलं असेल, जेणेकरून या जगाचा यावा वीट किंवा वैराग्य, त्यांच्या मनामध्ये वैराग्य उत्पन्न झालं. फारच थोड्या कालावधीमध्ये आणि ते सिद्धीला प्राप्त झाले, भगवंत प्राप्त झाले अगदी थोड्या वेळावर. अर्थात वेळ किती आहे त्यावरती, किंवा त्याचा आपण कसा सदुपयोग करतोय. आता वेळ कमी आहे तर काय करायला हवं, मग तळमळ कळकळ वाढवायला हवी. वेळ जास्त असेल तर जसं आपण पैसे जास्त असतील तर आपण जास्त विचार नाही करत खर्च करताना, पैसे जास्त असेल आपण असं सढळ हाताने खर्च करतो, पण पैसे कमी असतील तर आपण जिकिरी करतो ना, काटकसर करतो, प्रत्येक पै पैचा विचार करून खर्च करतो, करतो की नाही. तसं ज्यावेळी वेळ कमी आहे त्या उरलेल्या वेळाचा आपण जसं कमी पैसे असलेला माणूस जसा विचारपूर्वक प्रत्येक पैसा प्रत्येक काय पैसा आणि काय काय असं पैसा अठ्ठणी काय आठ काय चवणी झाली हिंदीमध्ये, चवणीला काय म्हणतात मराठी, 4 आणे 8 आणे 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 प्रत्येक आणा 16 आण्याचे एक रुपया, ते आपण विचार करून त्या उरलेला जो काही किंवा कमी वेळ असेल तर अधिक तळमळ कळकळ वाढवायला हवी. क्वांटिटी जास्त नाही आपल्याकडे, वेळेची क्वांटिटी कमी आहे, तेव्हा काय करायला हवं तर क्वालिटी वाढवायला हवी भक्तीची. तेव्हा आणि त्यासाठी श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभूंनी दिलेलं हे जे आंदोलन, हा जो महामंत्र आहे, कमी वेळामध्ये आपण भक्त बनू शकतो, मुक्त होऊ शकतो, असे कितीतरी अनुभव आहेत. हरे कृष्ण भक्त देश विदेशातले किती Yes. Vairagyani, Jnan, Ani Bhakti, Prapta Hotya Hai. Vaikunth Gaman Chalo Hai. Itari Bhakta Gele Vaikuntha Madhe. Iskon Che Bhakta, Iskon Padli Hari Chaitanya Mahaprabhu Ji Bhakti Karun. Vitar Je Karma Kand, Gyan Kand, Anikai Devi, Devata, He, Tej, ज्या धर्माच्या गोष्टी आहेत त्यातून फळ प्रत्येक जीवनामध्ये थोडं थोडं जास्त नाही थोडं थोडं सर्व धर्मान परित्यज्य भगवान त्याला म्हणतात सोडा जे सोडा म्हणतो त्यालाच आपण धरून बसतो त्यामध्ये वेळ जातो अशी आयुष्य जर आपल्याकडे पुष्कळ आयुष्य जर असतील तरी भगवंत हाती नाही लागणार न दाने न तपसा न चेज्जया भगवंताने स्पष्ट केलं दान धर्म आणि हे आणि ते बस काय काय पुष्कळ धर्म आहेत तेव्हा भक्त्यातू अनन्या शक्य केवळ भक्तीन प्रेमपूर्वक भक्ती ज्या आजचा विषय तोच आहे प्रेमपूर्व भक्ती मग कृष्ण वशीभूत होतात मग भक्त प्राप्त होतात त्याचा मित्र बनतात पुत्र बनतात प्रियकर बनतात अशी शक्ती असं सामर्थ्य या हरे कृष्ण आंदोलनाची जी विधी आहे चैतन्य महाप्रभूंनी दिलेली विधी अशी इतर ठिकाणी सापडणार नाही या जगभर जे धर्माचं अनुसरण पालन होत आहे गौण गौण जे धर्माची तत्व आहेत प्रधान आणि गौण प्रिन्सिपल प्रायमरी सेकंडरी सर्व जग सेकंडरी प्रिन्सिपल मध्ये गौण विधीमध्ये लीन आहे ते कृष्णाच ऐकायला हवं आपण सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरण माम एकम माझी एकट्याची शरण माम एकम शरण ते भगवंताची शरण घेणं या कलियुगामध्ये म्हणजे काय करणं हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम याचा अर्थ आहे मामेकम शरणम ब्रज हे महामंत्राचं कीर्तन म्हणजेच मामेकम शरणम ब्रज जो आतापर्यंत हरिनाम संकीर्तन करत नाही गात नाही म्हणजे त्याला अद्याप गीतेचं सार नाही समजलं किंवा भगवंताची जी अपेक्षा आहे जीवाने काय करावं त्यांची शरण घ्यावी मामेकम शरणम ब्रज जो जप करतोय कीर्तन करतोय जो कलियुगचा धर्म आहे म्हणजेच त्यानं मामेकम शरणम प्रश केलेली आहे त्याचं फळ काय अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामी मग तुम्ही तुमच्या ज्या पापाच्या राशी आहेत पापाचे डोंगर आहेत ते राख बनतील खाक राख बनतील आणि मोक्षयिष्यामी मला मुक्ती भक्ती प्राप्त होईल तर चैतन्य फास्टेस्ट ट्रॅक सर्वात गतीनं जाण्याचा जो मार्ग आहे जो मार्ग तो भक्ती वेदांत स्वामी मार्ग आहे कोणता मार्ग भक्ती वेदांत स्वामी मार्ग त्या मार्गाला तुम्ही लागलात तर थेट जाणार कृष्ण बलराम मंदिरात वृंदावन मध्ये एक भक्ती वेदांत स्वामी मार्ग आहे दिल्ली आग्रा हायवे वरून जात असताना ज्यावेळी ब्रजमंडळामध्ये तुम्ही प्रवेश करता किंवा त्या मार्गाला तुम्ही लागला भक्ती वेदांत स्वामी मार्गाला लागला तर मग वृंदावन मध्ये प्रवेश नाही तर मग आग्रा खेड आग्र्यापर्यंत जाणार नाही. भक्ती वेदांत स्वामी मार्ग पोहोचवेल आपणाला राधाश्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौरनीतांच्या चरणी. उपाय उपलब्ध आहे. कौन सा वच वन माधुर्य रस.
यस
क्या लास्ट पार्ट. यस ओके डन.
सो इज इट दैट कृष्ण इज लव्ड बाय मोस्ट बाय राधा रानी देन कंपेयर्ड टू हिज मदर हु इज वात्सल्य भक्ति लव कैन बी कंपेयर्ड बट हु इज मोर बेनिफिशियल बीइंग इन दैट टू राधा इज यशोदा इज बेनिफिशियल बीइंग इन वात्सल्य और राधा रानी बीइंग इन माधुर्य रस.
Because Krishna wants to enjoy varieties of rasas. If he was to enjoy only one ras, that would be boring. But change is spice of life. There's something. Change of what? Variety. Variety is mother or spice of life or something like variety. So Krishna also is not exception to this rule. In fact, this applies to him first and then us next. Why we like variety? Why do we like variety? If you know all day the some big police officer or superintendent of police is always ordering his officers and they're all, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes, sir. All day. He feels bored. By the end of the day, he has enough of this and is very anxious to go home and meet his family and be with his children. And then when his children are beating, children sometimes they beat, you know, the whole ear of the father and daddy. So father likes that kind of, he enjoys this. He enjoys more than this thing. And then he's anxious to talk with his wife. There's another ras. Anxious to meet with friends also. He's looking forward to that. So these are rasas. These rasas, which is a reflection of the original rasas in the spiritual sky. So they all exist. The spiritual sky, variety exists. So Krishna enjoys. It's difficult to say. This may be offensive to say, yes. Technically we say yes, it becomes concentrated. You go from dasya to sakya to vatsalya to madhurya. Each rasa is more concentrated. Nectar more concentrated, further boiled down and then more nectarian. But each one is giving him special flavor. So Krishna is equally anxious. Now in Yashoda in the morning she's dressing Krishna, getting his lunch pack ready. But Krishna is anxious to go to herd the cows and to be with the friends. So from Vatsalya he is going to Sakya. He is already busy with Vatsalya, which is supposed to be higher. But when there is time, his friends have come and they are all knocking at the door and playing their bugle, the horn, buffalo horns. Are you in Maya, Krishna? So late. So Krishna is very anxious to join his friends. But then as he is playing with his friends, he is also very anxious around noon time. His appointment is with Radharani and gopis at Radhakund every noon time. So he is also very anxious to go be with them. Then he knows his friends must be waiting and wondering, where is Krishna? They are looking for him. And he steps out and is again back with the friends. But then he remembers, oh, I left my mother behind at home this morning. I better go. She must be anxiously waiting for me. So he's rushing back to home to go to Nandagram. So he's going from one rasa to another rasa to another rasa. And while he's with his friends, he is completely absorbed. He is into his... He enjoys, he relishes that friendship. He doesn't tell, you know, my friends, you know, this Madhurya Rasa is supposed to be more sweet. So, you get lost, you go away. I'm going to go to enjoy the other Rasa. Or to Yashoda, Krishna doesn't say, you know, Yashoda, this rasa that I get from you is much inferior. I am more happy with Radharani. Does Krishna ever say this? Does he ever think like this? He has any thoughts like this? So he is with the friends and he is with them 100%. He is with them and he is enjoying. Then he is with the mother, father. He's happy. Then he's also happy with Radha and Krishna. I mean, Gopi Krishna. So it's a bit technical. This higher than that, and more concentrated. Yes, but they all have their place in Krishna's life, in Krishna's pastime. They all have its due importance and significance. So, it's very hard to compare and say, oh, this is better, this is bad. It's all Ananda Kunde. There's a big part of lake of Anand, bliss. And Krishna is just enjoying different waves, this wave, now another wave, another wave. Same ocean of his abode called Gokul Vrindavan or Golok Vrindavan. Okay? Alright. Dhanyavad. Hare Krishna.